हवेली, वही सुबह। सुबह की धूप आज कुछ अलग थी, न बहुत तेज न बहुत धीमी, बस उतनी जितनी हवेली की पुरानी दीवारों को एक नरम सी गर्माहट दे सके। बरामदे की ठंडी हवा खिड़कियों से होकर कमरे में घुस रही थी, जैसे रात की बची ठंडक ने सुबह से हाथ मिलाया हो। श्यामली बाहर से लौटकर अपने कमरे में आई तो कमरे की पीली लाइट और सुबह की धूप मिलकर एक अजीब सी शांति फैला रही थी। दरवाज़ा बंद करते ही जैसे बाहर की सारी आवाज़ें पीछे छूट गईं, बस उसकी अपनी धड़कन रह गई, जो आज न जाने क्यों थोड़ी तेज थी। उसने अलमारी खोली। अंदर रंग बिरंगी साड़ियां, सूट और दो चार भारी बनारसी। रत्ना देवी की सुबह वाली सख्त आवाज़ कानों में फिर गूंज गई। फैमिली फोटो में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस यही बात उसके दिमाग में बार बार घूमती रही। अलमारी के सामने वही पल, श्यामली ने हल्की गुलाबी साड़ी उठाई, फिर सफ़ेद वाली, फिर हरी किनारी की सिल्क। लेकिन उसका मन वो तो कहीं और ही अटका था। उसने साड़ी वापस रख दी और बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसकी उंगलियां अनजाने में अपनी कलाई पर घूमी, वहीं जहां सुबह विश्वनाथ के बहुत करीब आने पर उसकी सांसें अटक सी गई थीं। सुबह का वो पल जब वो विश्वनाथ की शर्ट में बटन लगा रही थी, वो उसके बिल्कुल पास झुकाया था। उसकी सांस, उसकी ऊष्मा, उसकी खामोश दबाव, सब कुछ फिर से याद में लौट आया। ये वाला बटन लगा दो, थोड़ा और ठीक से लगा देना। उस पल को याद करते ही श्यामली ने खुद को हल्के से अपनी ही बाहों में समेट लिया। अगर उन्होंने फिर ऐसा कहा तो मैं साफ मना कर दूंगी। उनके इतने करीब होने से मुझे सच में डर लगता है। चेहरा शांत था, मन भारी, जैसे हवेली ने उसे सिखा दिया हो कि भावनाएं हमेशा अंदर रखनी होती हैं। तभी दरवाजे के बाहर दो हल्की पर उत्साहित आवाज़ें सुनाई दीं। मामी जी, रम्या मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसके पीछे मधु, हाथ में साड़ियों का छोटा सा ढेर लिए। रम्या उछलकर बिस्तर पर बैठी। चलो, आज हम आपकी फैशन गुरु बनने आए हैं, मधु ने शांत स्वर में कहा। बहू जी, कल फोटो है, साड़ी और ज्वेलरी अभी ही चुन लेते हैं। श्यामली मुस्कुरा तो दी पर मन अब भी उलझा हुआ था। रम्या एक एक साड़ी उठाकर दिखाती रही। ये कैसी? ये तो बहुत अच्छी लगेगी। मामी, ये परफेक्ट है, मधु ने ज्वेलरी का डिब्बा खोला। ये चूड़ियां लीजिए बहू जी, मालकिन को भारी पसंद है। लेकिन श्यामली बाहर से शांत, अंदर से बिखरी हुई। रम्या ने पूछा, मामी आप आज बहुत चुप हो, क्या हुआ? श्यामली ने वही आदत वाली मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। लेकिन रम्या की आंखों ने उसकी चुप्पी नोट कर ली। तभी दरवाजे की आवाज़, शकुंतला। कमरे में आते ही उसकी आंखों में नाराजगी की कड़ी रेखाएं उतर आईं। रम्या, तू यहाँ क्या कर रही है? स्कूल क्यों नहीं गई? रम्या सकपका गई। माँ, मैं तो बस मामी की मदद। मदद? शकुंतला की आवाज़ सख्त। स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है, मधु को घूरा। और तुम काम छोड़कर इधर उधर घूमती रहती हो? सहमी। मालकिन मैं तो चुप, बाहर जाओ, मधु सर झुकाकर निकल गई। रम्या भी धीमे स्वर में बोली, मामी शाम को मिलती हूँ, और वो भी चली गई। अब कमरे में बस दो लोग, श्यामली और शकुंतला। शकुंतला ने उसे कुछ देर तक देखा, जैसे उसकी आंखों के पीछे छिपा हर भाव पढ़ लेना चाहती हो। एक शक, एक अधूरा विचार, एक ठहराव, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ी और बाहर चली गई। श्यामली की सांस जैसे वापस लौटी, पर दिल में शकुंतला की आंखों का वो ठहराव एक बेचैनी छोड़ गया। कमरा फिर शांत, सुबह की हल्की धूप, पीली लाइट और अलमारी में टंगी साड़ियां। श्यामली ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसने एक हल्की गहरे नीले बॉर्डर वाली पेस्टल क्रीम साड़ी चुनी। ये ठीक है, सादी साफ सुथरी, तस्वीर में भी अच्छी लगेगी। एक सिंपल पर्ल सेट अलग रखा, फिर सब कुछ समेटकर बिस्तर पर साड़ी रख दी। सब शांत था, बस उसके मन में नहीं, सुबह विश्वनाथ के करीब आने का पल फिर से सामने उभर आया।
अगर उन्होंने फिर कहा कि बटन लगा दूं, तो मैं मना कर दूंगी, अब और नहीं। इस बार उसके दिल में डर नहीं, एक छोटा ठोस सा दृढ़ निर्णय था।